यीशु के बपतिस्मा का सुसमाचार जिसने हमें शुद्ध बनाया है। इफिसियो अध्याय 2:14-22। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र आत्मा लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। किसने लोगों को परमेश्वर के विमुख किया? उसके पाप ने यह किया। गरीबी के कारण गोद लिया हुआ बच्चा। कोरियन युद्ध को समाप्त हुए आधी सदी बीत चुकी है, लेकिन उसने कोरियन लोगों के अंदर गहरे घाव छोड़े हैं। कोरियन युद्ध के परिणाम के बाद कई जवान बच्चों को विदेशी देशों ने गोद लिया, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की सेना भी कोरिया आई और उस समय हमें बहुत मदद की, लेकिन जब सैनिक वापस चले गए तब कई बच्चे अनाथ बन गए। संयुक्त राष्ट्र के कई सैनिक जिनकी पत्नियां और बच्चे थे वे जब वापस गए तब अपने परिवार को यहां छोड़ गए। उनमें से कई बच्चे अपनी मां के द्वारा अनाथ आश्रम में छोड़ दिए गए और बाद में गोद लेने के लिए विदेश में भेज दिए गए। वह वास्तव में अच्छा था कि उन जवान बच्चों को पालन करने वाले माता पिता मिल गए और उनकी परवरिश अच्छे से हो पाई। यह गोद लिए हुए बच्चे जब बड़े हुए यह उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने माता पिता और पड़ोसी से अलग दिखते हैं और उन्हें मालूम पड़ा कि वे कोरिया नाम के देश से गोद लिए हुए थे। क्यों मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया? क्या वे मुझसे नफरत करते थे इसलिए मुझे इस देश में भेज दिया? अपने जवान मन के साथ यह बच्चे नहीं समझ पाए कि क्या हुआ था। अपने सच्चे माता पिता के प्रति जिज्ञासा और नफरत के उन्होंने उनसे मिलने के लिए बेबस कर दिया था। मैं सोचता हूं कि मेरे माता पिता कैसे दिखते हैं, वे मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे नफरत करते थे? नहीं, ऐसा करने के पीछे कोई वजह जरूर होगी। उनको कई तरह की गलत फहमियां होगी और कई बार वे नफरत को महसूस करते होंगे और दूसरी ओर वे इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते। वे इसके बारे में जान पाते उससे पहले वह बच्चे बड़े हो गए और जब जवान हो चुके हैं उन्होंने शादी कर ली है, उनके बच्चे हैं और उन्होंने अपना परिवार बनाया है। एक स्थानिक टीवी नेटवर्क के एक प्रोग्राम के द्वारा मुझे इन बच्चों में दिलचस्पी हुई। यह प्रोग्राम में टीवी रिपोर्टर एक स्त्री का इंटरव्यू ले रही थी जो जर्मनी में रहती थी और जिसे गोद लिया गया था। यह स्त्री उस समय अपने 20 साल की उम्र से गुजर रही थी और वह धर्मशास्त्र की पढ़ाई कर रही थी। पहले तो वह स्त्री टीवी इंटरव्यू से अपने आप को बचाती रही क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग यह जाने कि वह गोद ली हुई थी। रिपोर्टर ने उसे समझाया कि उसका इंटरव्यू विदेश के लोगों को बच्चे गोद लेने की जानकारी में मदद करेंगे। फिर स्त्री मान गई। रिपोर्टर का एक प्रश्न यह था, यदि आप अपने सच्चे माता पिता से मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप किसके बारे में ज्यादा उत्सुक है? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि उन्होंने मुझे क्यों गोद दे दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वे मुझसे नफरत करते थे? उसको जन्म देने वाली माता ने यह इंटरव्यू टीवी पर देखा, टीवी प्रसारण करने वालों का संपर्क किया और कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। इस तरह दोनों मिले। माता जल्दी ही हवाई अड्डे पर आ गई थी और अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी। जब वह जवान स्त्री बाहर आई तब उसकी मां केवल वहीं खड़ी रही और रोने लगी। यह दोनों व्यक्ति कभी भी आमने सामने नहीं मिले थे। मां ने अपनी बड़ी हुटी हुई बेटी को पहली बार टीवी में देखा। भले ही वे दोनों अलग अलग भाषा में बोलते थे लेकिन वे अपने दिलों से बात कर रहे थे और भावुकता से वे एक दूसरे से मिले। उन्होंने एक दूसरे के चेहरे को छुआ और मां ने जो किया था उसके लिए माफी मांग रही थी। वह केवल रो सकती थी और जो कुछ भी उसने किया उसके बदले में माफी मांग सकती थी। मां अपनी बेटी को घर लेकर आई और उन्होंने साथ में खाना खाया। निसंदेह बेटी केवल जर्मन भाषा बोलती थी और मां केवल कोरियन, इसलिए वे शाब्दिक रीति से बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन किसी तरह से मां और बेटी ने एक दूसरे को समझा। उन्होंने बिना शब्द के कई बातें की और उन्होंने हाथों के इशारों से एक दूसरे के चेहरे को छूकर और आंखों से और हृदय से बात की। जब वह जर्मनी वापस लौट रही थी, तब बेटी को पता चला कि उसे जन्म देने वाली मां उससे प्यार करती थी। जिस पत्रकार ने पहला इंटरव्यू लिया था, उसने उसके जाने से पहले फिर से एक बार और इंटरव्यू लिया। मुझे यह पूछने की कोई जरूरत नहीं थी कि क्यों मेरी मां ने मुझे गोद ले लिया। मेरी मां आज भी गरीब है और इस देश के कई समृद्ध व्यक्ति इतने अमीर हैं कि वे विदेशी कार चलाते हैं, लेकिन मेरी मां आज भी गरीब है। उसने आगे कहा, भले ही मैंने मेरी मां से वह प्रश्न नहीं पूछा और मुझे उससे कोई उत्तर नहीं मिला, मैंने देखा कि उसने मुझे इस गरीबी से बचाने के लिए दूर भेज दिया, इसलिए मुझे उसे यह प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और अब सारा संदेह और नफरत चला गया। लोग अपने हृदय में पाप की वजह से परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। क्यों हम परमेश्वर से अलग हो गए और क्यों हम उसके करीब नहीं जा सकते? जिस स्त्री को गोद लिया था, उसने सीखा कि उसकी मां ने उसे गरीबी से बचाने के लिए उसे दूर भेज दिया था। क्या यह परमेश्वर के साथ भी सच नहीं है? परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है, हमें उससे कौन अलग कर सकता है? उत्तर यह है कि शैतान ने मनुष्य को पाप करने के लिए उकसाया और पाप ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया। आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था और वह अपनी सृष्टि से बहुत प्रेम करता था। मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम के उद्देश्य से बनाया गया था और सारी सृष्टि में वह सबसे श्रेष्ठ था। हालांकि नीचे गिरे गए दूत जिसका नाम शैतान है, उसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने के लिए कार्य किया। शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर का वचन मानने के लिए उकसाया और उसे अच्छा और बुरा जानने वाले पेड़ का फल खिलाया। ऐसे मनुष्य अपने पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया। मनुष्य परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहा। मनुष्य ने अनंत जीवन देने वाले पेड़ का फल नहीं खाया, जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी थी, लेकिन उसने भला बुरा जानने वाले पेड़ का फल खाया और आज्ञा को तोड़ा। उसका परिणाम यह था कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। पहले परमेश्वर के प्रेम का हकदार मनुष्य घमंड की वजह से परमेश्वर से अलग हो गया। उसके हृदय में पाप होने की वजह से मनुष्य धीरे धीरे परमेश्वर से विमुख हो गया। उसके बाद मनुष्य लंबे समय तक परमेश्वर से अलग रहा और शिकायत करने लगा, क्यों परमेश्वर ने हमें बनाने के बाद छोड़ दिया? क्यों उसने हमें कमजोर बनाकर नरक में भेज दिया? उससे अच्छा तो यह होता कि उसने हमें बनाया ही न होता। हम जन्म से पहले कई प्रश्नों के साथ उत्सुकता, संदेह और नफरत को लेकर जी रहे हैं। जब मैंने गोद ली हुई स्त्री को टीवी प्रोग्राम में देखा, तब मुझे समझ में आया कि जैसा उसका अपनी सच्ची मां के साथ रिश्ता था, वैसा ही रिश्ता मनुष्य का परमेश्वर के साथ है। कोई आपत्ति, गलतफहमी, श्राप और किसी भी प्रकार का पाप किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। मैं यह भी समझ पाया कि भले ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता प्रेम पर निर्भर है, तो भी गलतफहमी होने की संभावना है। जैसे मां ने नफरत की वजह से बेटी को दूर नहीं भेजा था, वैसे ही परमेश्वर ने नफरत के कारण नहीं, लेकिन पाप के कारण अपने आप को मनुष्य से अलग कर लिया। परमेश्वर के पास मनुष्य को नफरत करने की कोई वजह नहीं है और मनुष्य के पास परमेश्वर को नफरत करने की कोई वजह नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मनुष्य परमेश्वर से अलग रहता है, उसका कारण यही है कि वह शैतान की चाल के सामने झुककर पापी बन गया। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें ग्रहण किया, इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 13-15। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। प्रभु ने व्यवस्था की आज्ञा को पूरा करने के लिए यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया था और जगत के सारे पापों को उठा लिया था। फिर उसने मनुष्य को उसके पापों से बचाने के लिए और परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। परमेश्वर अब उनको ग्रहण करता है जो उसके द्वारा साफ किया गया है। क्या आपने कभी बिना पानी की दुनिया की कल्पना की है? थोड़े समय पहले मैंने इंचोन शहर में बाइबल की सभा में हिस्सा लिया था। जो कोरिया के बड़े बंदरों में से एक था, जहां थोड़े दिनों तक नलों में पानी नहीं आया, और मैंने सोचा कि लोग पानी के बगैर नहीं जी सकते। यदि परमेश्वर एक महीने के लिए इस दुनिया को बिना पानी की कर दे, तो शहरों में बदबू, गंदगी और अत्यधिक प्यास की वजह से जीना असंभव हो जाएगा। हमें पानी की अहमियत समझनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जैसे पानी मनुष्य के लिए आवश्यक है, वैसे ही यर्दन नदी में यूहन्ना के द्वारा यीशु ने जो बपतिस्मा लिया, वह भी उतना ही आवश्यक है। यदि यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने इस दुनिया में नहीं आते, तो यीशु में विश्वास करने वाले पापों की माफी कैसे प्राप्त करते? जैसे मनुष्य पानी के बगैर नहीं जी सकता, वैसे ही यदि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लिया होता, तो इस जगत में सारे लोग अपने पापों की वजह से मर गए होते। हालांकि यीशु के बपतिस्मा ने हमारे सारे पापों को ले लिया है। अब हम अपने ज्ञान में अस्वस्थ हो सकते हैं कि हमारे हृदय को शुद्ध किया गया है और हमें उद्धार का आशीष मिला है। इसके अलावा उसका बपतिस्मा हमारे पवित्र आत्मा का अंतर निवास पाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यीशु के एक चेले पत्रस ने पहला पत्रस अध्याय 3:21 में कहा, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। पत्रस का कथन कहना है कि यीशु ने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। यीशु का बपतिस्मा जो जगत के सारे पापों को साफ करता है, वह सच्चा सुसमाचार है। आइए अब निर्गमन अध्याय 30:17-21 में पीतल की हौदी के विषय में एक परिच्छेद को देखते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने न आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, नहीं तो वो मर जाए। यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। मिलाप वाले तंबू में पीतल की हौदी थी, जो मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में थी, जिसमें धोने के लिए पानी भरा हुआ था। यदि यह हौदी मिलाप वाले तंबू में नहीं होती, तो याजक बलिदान चढ़ाते समय कितने गंदे हुए होते। लोगों के लिए हारून बलिदान चढ़ाने वाले और बलि के ऊपर अपने हाथों को रखने वाले याजक के ऊपर लहू और गंदगी के कितने धब्बे लगे होते। यदि मिलाप वाले तंबू में हौदी नहीं होती, तो याजक बहुत ही गंदे हो जाते। इसीलिए परमेश्वर ने उनके लिए हौदी बनवाई, ताकि वे परमेश्वर के पास साफ हाथ लेकर जा सके। पापी पाप बलि के शिर पर अपने हाथों को रखने के द्वारा अपने पाप बलि के ऊपर डालता था, और उनके बदले याजक परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते। परमेश्वर ने पीतल की हौदी तैयार की, ताकि याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए अपने आप को पानी से साफ कर सके, नहीं तो वे मारे जाते। यहां तक कि याजक पशु के लहू के धब्बों के साथ पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसीलिए याजक लोगों के लिए बलिदान चढ़ाने के बाद परमेश्वर से नजदीक जाने के लिए सारी गंदगी को हौदी के पानी से साफ करता था। यीशु के बपतिस्मा ने जगत के सारे पापों को धो दिया। यर्दन नदी में यूहन्ना के द्वारा यीशु के बपतिस्मा से जगत के सारे पाप उसके ऊपर स्थानांतरित हो गए थे, और पानी में पूरी तरह से डुबकी लगाना उसके मृत्यु को दर्शाता है, और पानी से बाहर आना उसके पुनरुत्थान को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, जगत के सारे पापों को लेने के लिए यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, पापों की कीमत चुकाई और क्रूस पर मर गया। उसकी मृत्यु हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए थी, और उसका पुनरुत्थान हमें अनंत जीवन देता था। यदि हम विश्वास नहीं करते कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया है, तो हमारे हृदय पापों से भर जाते। इस मामले में हम कैसे परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं? पापों की माफी का सुसमाचार संस्था का कोई सिद्धांत नहीं, लेकिन परमेश्वर का सत्य है। हम संपूर्ण ज्ञान के बगैर हमारे विश्वास की अगुवाई नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, यदि हम इस बात की परवाह नहीं करते कि यीशु ने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया है, तो हम संसार को जीत नहीं पाएंगे। जैसे सारे जीव को जीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें विश्वास से जीने के लिए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पापों की माफी और यीशु के बपतिस्मा का पानी जरूरी है। हमें हमारे पापों से बचाने के लिए यीशु को बपतिस्मा लेना पड़ा, क्रूस पर मरना पड़ा और पुनरुत्थित होना पड़ा। यह पानी और आत्मा का सुसमाचार है जिस पर हमें अपने पूरे हृदय से विश्वास करना है। भले ही यीशु को मरने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन उसने सजा पाने के जैसा कुछ भी नहीं किया था। वह हमारे पापों को धोने के लिए इस जगत में आया, 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया और 33 साल की उम्र में क्रूस पर मरने के द्वारा हमारा उद्धारकर्ता बना। परमेश्वर मनुष्य जाति को अपनी संतान बनाना चाहते हैं, भले ही फिर हम बहुत दुर्बल और पापी क्यों ना हो। इसीलिए यीशु ने बपतिस्मा लिया था। परमेश्वर ने हमें एक ही समय में पापों की माफी और पवित्र आत्मा का उपहार दिया। बाइबल कहती है कि जब तक कोई पानी और आत्मा से न जन्मे, तब तक वह न तो परमेश्वर के राज्य को देख सकता है और न तो उसमें प्रवेश कर सकता है। आपको जानना होगा और विश्वास करना होगा कि हमारे सारे पापों को धोने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया। यदि कोई नया जन्म पाया हुआ मसीही है, लेकिन यदि वह इस बात को नहीं जानता कि यीशु ने जगत के सारे पापों को उठाने के लिए बपतिस्मा लिया था, तो उसका हृदय जल्द ही मैला हो जाएगा। क्योंकि हम शारीरिक प्राणी है, इसलिए हर दिन के जीवन में पाप की वजह से मैले हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा विश्वास से जीना चाहिए और यीशु के बपतिस्मा, उसके लहू और पुनरुत्थान पर मनन करना चाहिए। यह विश्वास जब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, तब तक हमें उठाए रखना है। यीशु के पास हमारे पापों के लिए बपतिस्मा लेने और मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि ऐसा करने से उसने हमें उद्धार दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें पानी और आत्मा का सुसमाचार दिया है। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़े उपहार के रूप में अपना इकलौता बेटा दे, जिसने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा हमें हमारे सारे पापों से बचाया। हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते और उससे दूर होकर जीने के लिए मजबूर हैं। उसके पीछे का कारण है कि हमारे हृदय में पाप है। जगत के सारे पापों को उठाने के लिए यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और मनुष्य और परमेश्वर को अलग करने वाली दीवार को तोड़ दिया और क्रूस पर अपनी जान दी। उसने बपतिस्मा और लहू की वजह से मनुष्य और परमेश्वर के बीच का रास्ता फिर से पुनर्स्थापित किया। उपहार के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। बच्चों के प्रति शारीरिक माता पिता का प्यार महान होता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, जिसने यीशु ने हम पापियों को बचाया है, उसके आगे उसकी कोई तुलना नहीं। यीशु का बपतिस्मा और लहू दोनों महत्वपूर्ण है। यदि दुनिया में पानी नहीं होता तो क्या कोई जीवित रह पाता? यीशु के बपतिस्मा के बगैर कोई भी अपने हृदय में बिना पापों के नहीं रहता। यदि यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया होता और यदि उसने क्रूस पर अपनी जान नहीं दी होती, तो किसी ने भी पापों की क्षमा नहीं प्राप्त की होती। सौभाग्यवश यीशु ने बपतिस्मा लेकर हमारे आखिरी बलिदान चढ़ाया। भले ही हमारे अंदर अभाव और अविश्वसनीयता है, फिर भी हम उसके बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू पर विश्वास करके पवित्र आत्मा पा सकते हैं। जो लोग यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के ज्यादा नजदीक जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उसकी स्तुति कर सकते हैं। अब हम प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हम उसकी संतान बन चुके हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष है। यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू का सुसमाचार सच में अद्भुत है। हम सब इस खूबसूरत सुसमाचार पर विश्वास करके उद्धार और पवित्र आत्मा का अंतर्निवास पा सकते हैं।